मेरा नाम इज़तला सलीमी है। मैं अफ़गानिस्तान से बिलोंग करती हूँ। 2009 से लेकर 2022 तक मैंने मीडियाज़ के साथ काम किए, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडियाज़ और टीवी मीडिया। करीबन 8 महीने हो चुके हैं कि हम यहाँ पहले पेशावर में रहने आए थे और उसके बाद अभी इस्लामाबाद में रह रहे हैं। मैं टीवी से निकल कर रेडियो पर पहुंच गया 5:30 बजे थे। कुछ लोग गवर्नमेंट कार में थे और मुझे ऑफिस से निकाल कर और गाड़ी में बिठा कर मुझे धक्का देकर गाड़ी में डाल दिया और ये पूछताछ कर रहे थे। शुरू उस प्रोग्राम से किए कि आपने निश्के दास्तान के नाम पर कोई प्रोग्राम्स चालू किए और उसमें आप अक्सर ऐसे टॉपिक चुनते थे कि पश्तून लोग को नीचा दिखाए, तालिबान की वजह से जो भी हो रहा है वो आप गैर शरई गैर इस्लामी दिखाए। हर सवाल पूछने के बाद जब भी मैंने कुछ कहने की कोशिश किया उन्होंने मुझे मारा। करीबन आखिर ऐसा हालत हुआ कि मेरा सर से भी खून जारी हुआ, ये मेरे कान भी करीबन फट गया। तो वहीं से मुझे गाड़ी से वहीं पर मुझे गाड़ी से उतार दिया। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ उतारा। जब मैं घर आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो भी हो गया थोड़ा ज्यादती हुई, क्योंकि सुनने को वो लोग तैयार नहीं थे और कोई हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ के जो उस टाइम करीबन 5-6 महीने के प्रेग्नेंट थे, इनके लिए पाकिस्तान के वीज़ों के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स ने कहा था कि बेबी की कंडीशन कुछ क्रिटिकल है, कुछ मसले कि शायद नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर ना हो जाए। मैंने कहा कि चलो हालात बदलने की कोई फुर्सत भी है, थोड़ा ये जो हमारे ऊपर गुजर गई है यहाँ पर ये इसको भी थोड़ा टाइम देते। 2023 पहले महीने में मेरे वीज़ा अप्रूव हो गया और यही फुर्सत था कि मैं वहाँ से निकल कर पाकिस्तान आ गया। एक ही रात में सब कुछ समेट कर करीबन 50,000 कलदार के साथ तोरखम पहुँच गए। मेरे साथ उस वक्त 2 बच्चे थे और मेरी बीवी मेरी वाइफ थी। तो मसला ये भी था कि मेरा वाइफ प्रेग्नेंट था, उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी और उसको संभालो बच्चों को संभालो, तो हालात के साथ नाशनाई ये भी मसला था। अब हम यहाँ ना कोई जान ना कोई पहचान, एक फ्रेंड था, मैंने काबुल से उससे कांटेक्ट किया था कि मेरे लिए कुछ कोई घर ढूंढो। उन्होंने कहा कि घर मिलना तो यहाँ पर आदमी क्या है बिना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप हो भी उसमें भी मसले हैं। मैंने कहा क्या मसले हैं? यहाँ पर जो अफगानिस्तान से नए लोग आते हैं उसको आसानी आसानी से घर नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करते हैं, जब तक घर मिल जाता है मैं आपके घर में रहता हूँ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आकर जब मैंने देखा कि यार यार एक कमरा है वो भी 3x3, इसमें किचन भी बनाना है, बीमार के साथ भी रहना है, बच्चों को भी संभालना है। हमारे वहाँ बहुत अच्छा घर था, तो एकदम से ऐसे जगह पे आना और रहना ये थोड़ा अजीब लग रहा था। करीबन 1-2 महीने के बाद ये बच्चों की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे थे। मेरी बीवी की भी आखिरी महीने थे, संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। महीने के आखिरी तारीख भी हो गया था, सामान समेट कर और पेशावर इस्लामाबाद आ गए। अफगान लोगों के लिए ये पॉलिटिकल इश्यूज जब दो कंट्री के बीच में होते ये सब अपने फ़ायदों के लिए लड़ाया आते हैं। मेरी नज़रिया ये है कि उनके बीच में ये जो गरीब आवाम लोग हैं इसको पीटना पीसना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। जो भी था अफगानिस्तान में कमा कर बैंक में डाला था, घर में था, बेच बेच कर ख़त्म हो गया। तो अगर ऐसे कोई तफाहम या साजिश हो जाए कि ये लोग जो अफगानिस्तान से आए हैं ये पाकिस्तान के लिए मुजिर नहीं है, तो उनको ना निकालने की ना डिपोर्ट करने की ना उस पर प्रेशर या दबाव डालने की ज़रूरत ना हो जाए। अफगानिस्तान में पिछले गवर्नमेंट के साथ जिस जिन लोगों ने भी काम किया है, खसूस सहाफ़ी लोग जिसके ताल्लुक जर्नलिज्म के साथ थे, उन लोगों की वहाँ ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। अक्सर जेल में थी, अक्सर लोग अभी भी जेल में हैं या मारे जा चुके हैं। तो एक मजबूरियत थी जो यहाँ पाकिस्तान में आ गई। अफगान रिफ्यूजीज़ का जो पाकिस्तान में रह रहे, सिर्फ यही तमन्ना है उन लोगों की या अफगान लोगों के साथ जो वादा किया था उस पर अमल करें। एक उम्मीद दिया था कि आपके बच्चों और आपके इसके अलावा कि आप ख़तरे से बच जाएंगे, आपके फ्यूचर के लिए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला, उम्मीद भी नहीं है।